इसराइल कुख्यात अपराधी। इसराइल का अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचों का पालन न करने का व्यापक रिकॉर्ड, जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी के प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी की सलाहकारी राय और अस्थायी उपाय और युद्धविराम समझौते शामिल हैं, इसे एक कुख्यात अपराधी राज्य के रूप में स्थापित करता है जो बिना किसी सजा के काम करता है और वैश्विक मानदंडों और दायित्वों की व्यवस्थित रूप से अवहेलना करता है। ये उल्लंघन, जो दशकों तक फैले हैं और जिसमें सैन्य आक्रामकता, क्षेत्रीय कब्जा, मानवाधिकार उल्लंघन और शांति समझौतों का उल्लंघन शामिल है, इसराइल की कानूनविहीन, दुष्ट और बहिष्कृत राज्य की स्थिति को रेखांकित करते हैं। यह निबंध इन ढांचों में गैर अनुपालन की कुल संख्या और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों को रेखांकित करता है, विशेष रूप से इसराइल के 2024 आईसीजी सलाहकारी राय को न मानने पर, जो इसके निपटान कार्यक्रम को रोकने और गाजा में मार्च 2025 से नरसंहार को रोकने के लिए आईसीजी के अस्थायी उपायों पर केंद्रित है, जो इसराइल के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय कानून के सबसे स्पष्ट और गंभीर उल्लंघनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त यह उन उल्लेखनीय युद्धविराम समझौतों का विवरण देता है जिनका इसराइल पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के प्रति इसकी पूर्ण अवहेलना को मजबूत करता है। कुल संख्या और महत्वपूर्ण यूएनएससी प्रस्ताव। इसराइल पर 1955 से 2024 तक कम से कम 53 यूएनएससी प्रस्तावों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जो सैन्य कार्रवाइयों, निपटानों और क्षेत्रीय विवादों को संबोधित करते हैं। निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो आरोपों की गंभीरता को दर्शाते हैं। प्रस्ताव 106, 1955, गाजा में छापेमारी के लिए इसराइल की निंदा की, जो अवैध सैन्य आक्रामकता के शुरुआती आरोपों को चिन्हित करता है। प्रस्ताव 171, 1962, सीरिया पर हमले के लिए इसराइल को घोर उल्लंघन में पाया, जो क्षेत्रीय अतिक्रमण को उजागर करता है। प्रस्ताव 446, 1979, निर्धारित किया कि पूर्वी यरूशलम सहित कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली निपटान शांति के लिए गंभीर बाधा हैं, जो चौथे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करते हैं। प्रस्ताव 497, 1981, गोलन हाइट्स के इसराइल के कब्जे को शून्य और अमान्य घोषित किया और इसे रद्द करने की मांग की। प्रस्ताव 2334, 2016, इसराइली निपटानों की अवैधता की पुनः पुष्टि की, सभी निपटान गतिविधियों को रोकने की मांग की। प्रस्ताव 2728, 2024, गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की, जिसमें इसराइल की निरंतर सैन्य कार्रवाइयों और मानवीय सहायता में बाधा डालने के आरोप शामिल हैं, जिसमें 7 कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाला एक सहायता काफिले पर हमला शामिल है। इसराइल का गैर अनुपालन, इसके निरंतर निपटान विस्तार, कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस न हटने और युद्ध विराम की मांगों के बावजूद निरंतर सैन्य कार्रवाइयों में स्पष्ट है, जो अवहेलना का एक पैटर्न दर्शाता है। कुल संख्या और महत्वपूर्ण उंगा प्रस्ताव। उंगा ने 1969 से 2024 तक लगभग 200 प्रस्तावों को अपनाया है, जो इसराइल पर मानवाधिकार, निपटानों और क्षेत्रीय संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं, जिसमें 2015 से 2023 तक 154 प्रस्ताव और 2024 में 17 प्रस्ताव शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण में शामिल हैं प्रस्ताव 2546, 1969, कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों की निंदा की, जो जाँच के लिए एक मिसाल कायम करता है। प्रस्ताव 3161, 1976, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के साथ इसराइल के सहयोग के कारण प्रतिबंधों की मांग की। प्रस्ताव 3627, 1981, इराकी परमाणु सुविधाओं पर इसराइल के हमले की निंदा की, मुआवजे की मांग की। प्रस्ताव 77247, 2022, 2024 आईसीजी सलाहकारी राय के लिए अनुरोध किया गया। 18 सितंबर 2024 का प्रस्ताव, इसराइल से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी अवैध उपस्थिति समाप्त करने की मांग की, जिसमें सैनिकों की वापसी, निपटानों की समाप्ति और मुआवजे की मांग की गई, जो 2024 आईसीजे राय से जुड़ा हुआ है। इसराइल का निपटान रोकने, कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस हटने या मानवाधिकार चिंताओं को संबोधित करने से इनकार वैश्विक सहमति की अवहेलना को रेखांकित करता है। कुल संख्या और महत्वपूर्ण आईसीजे निर्णय, अस्थायी उपाय और सलाहकारी राय। इसराइल पर 3 आईसीजी सलाहकारी रायों और एक विवादास्पद मामले में अस्थायी उपायों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण में शामिल हैं सलाहकारी राय 1971, दक्षिण अफ्रीका की नामीबिया में निरंतर उपस्थिति के कानूनी परिणाम, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के साथ इसराइल के सहयोग के कारण अप्रत्यक्ष रूप से इसराइल को फंसाया, जैसा कि उंगा प्रस्ताव 3161, 1976 में उल्लेख किया गया। 1980 के दशक तक इसराइल के निरंतर संबंध गैर अनुपालन का सुझाव देते हैं। सलाहकारी राय 2004, दीवार के निर्माण के कानूनी परिणाम, कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इसराइल की दीवार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत पाया, जो चौथे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करता है। इसराइल को निर्माण रोकने, दीवार को ध्वस्त करने और मुआवजा देने का दायित्व था, लेकिन दीवार का शासन बना हुआ है। सलाहकारी राय 2024 इसराइल की नीतियों और प्रथाओं के कानूनी परिणाम इसराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया, जिसने मानवीय कानून, मानवाधिकार कानून और कब्जे और रंगभेद पर प्रतिबंध के उल्लंघन का हवाला दिया गया। इसराइल को अपनी उपस्थिति समाप्त करने, बसने वालों को निकालने और मुआवजा देने का आदेश दिया गया। अस्थायी उपाय 2024-2025 दक्षिण अफ्रीका बनाम इसराइल नरसंहार मामला। इसराइल को नरसंहार के कृत्यों को रोकने, मानवीय सहायता सुनिश्चित करने और रफा में सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का आदेश दिया गया, जिसमें जनवरी, मार्च और मई 2024 और मार्च 2025 में उपाय जारी किए गए। मार्च 2025 से गाजा पर इसराइल की पूर्ण घेराबंदी इन आदेशों का उल्लंघन करती है। इसराइल का इन निर्णयों और उपायों का पालन करने में विफलता आईसीजे के अधिकार को अस्वीकार करने को उजागर करती है। कुल संख्या और उल्लेखनीय युद्धविराम समझौते। इसराइल पर 2006 से कम 5 प्रमुख युद्धविराम समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, मुख्य रूप से गाजा और लेबनन में, जो शांति प्रयासों को कमजोर करता है। सबसे उल्लेखनीय में शामिल हैं 2006 लेबनन युद्धविराम, यूएनएससी प्रस्ताव 1701, इसराइल ने लेबनानी क्षेत्र से पूरी तरह से वापसी नहीं की और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, जिससे शत्रुता समाप्त करने की शर्तों का उल्लंघन हुआ। 2012 गाजा युद्धविराम, इसराइल पर सैन्य अतिक्रमण और हवाई हमलों का आरोप लगाया गया, जिसने फिलिस्तीनी गुटों के साथ शत्रुता रोकने के समझौते का उल्लंघन किया। 2014 गाजा युद्धविराम, इसराइल ने नवंबर 2012 से जुलाई 2014 के बीच 191 उल्लंघन किए, जिनमें घातक हमले शामिल थे, जबकि फिलिस्तीनी गुटों द्वारा 75 उल्लंघन किए गए। 2024 लेबनन युद्धविराम, इसराइल ने 24 घंटे की अवधि में 52 उल्लंघन किए, जिसमें सैन्य कार्रवाइयां शामिल थीं। 2025 गाजा युद्धविराम, इसराइल पर 350 से अधिक उल्लंघनों का आरोप लगाया गया, जिसमें 155 फिलिस्तीनियों की हत्या करने वाले हवाई हमले, फिलाडेल्फी कॉरिडोर से वापस न हटने और सहायता में बाधा डालना शामिल है। ये उल्लंघन, जो अक्सर सैन्य कार्रवाइयों और सहमति शर्तों का पालन करने में विफलता को शामिल करते हैं, इसराइल की शांति प्रतिबद्धताओं के प्रति अवहेलना को दर्शाते हैं। 2024 आईसीजे सलाहकारी राय का इसराइल का गैर अनुपालन। 19 जुलाई 2024 को जारी 2024 आईसीजे सलाहकारी राय और 18 सितंबर 2024 को उंगा प्रस्ताव के रूप में अपनाई गई ने इसराइल के फिलिस्तीनी क्षेत्र, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और अक्टूबर 2023 से पहले गाजा के कब्जे को अवैध घोषित किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, मानवाधिकार कानून और रंगभेद के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत कब्जे और रंगभेद पर प्रतिबंध के उल्लंघन का हवाला दिया गया। कोर्ट ने इसराइल के निपटान विस्तार को उजागर किया, जिसमें नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक लगभग 24,300 आवास इकाइयों को आगे बढ़ाया स्वीकृत किया गया और यरूशलम की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने वाले उपायों को अवैध कृत्यों के रूप में चिन्हित किया। आईसीजे ने इसराइल को निम्नलिखित करने का आदेश दिया, सभी नए निपटान गतिविधियों को रोकना और बसने वालों को निकालना, सैन्य बलों को वापस लेना और कब्जे का समर्थन करने वाले प्रशासनिक उपायों को समाप्त करना, 1967 से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देना, जिसमें भूमि वापस करना और विस्थापित व्यक्तियों की वापसी की सुविधा देना। 124 मतों के साथ पारित उंगा प्रस्ताव ने इन दायित्वों को मजबूत किया, जिसमें इसराइल से एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी अवैध उपस्थिति समाप्त करने की मांग की गई। इसराइल का गैर अनुपालन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि 2024 और 2025 में नए आवास इकाइयों को स्वीकृत करने के साथ निपटान निर्माण जारी रहा और बसने वालों की निकासी या सैन्य वापसी की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इजरायली सरकार ने आईसीजे राय को अमान्य के रूप में खारिज कर दिया और निपटानों का विस्तार करने और पूर्वी यरूशलम की स्थिति को बदलने की नीतियों को जारी रखा। यह अवहेलना एक लगभग सर्वसम्मति से आईसीजे निर्णय और उंगा के भारी समर्थन के खिलाफ इसराइल के इतिहास में सबसे स्पष्ट उल्लंघनों में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय पर वैश्विक सहमति के प्रति पूर्ण अवहेलना को दर्शाता है। नरसंहार को रोकने के लिए आईसीजे अस्थायी उपायों का इसराइल का गैर अनुपालन। दक्षिण अफ्रीका बनाम इसराइल नरसंहार मामले में आईसीजे ने जनवरी, मार्च और मई 2024 और मार्च 2025 में अस्थायी उपाय जारी किए, जिसमें इसराइल को गाजा में नरसंहार के कृत्यों को रोकने, मानवीय सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने और विशेष रूप से रफा में सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का आदेश दिया गया। ये उपाय इसराइल की सैन्य अभियान के बीच नरसंहार के आरोपों के जवाब में थे, जिसके परिणामस्वरूप 2025 की शुरुआत तक गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय के अनुसार 43,000 से अधिक फिलिस्तीनी मौतें और 75,577 घायल हुए। मार्च 2025 से गाजा पर इसराइल की पूर्ण घेराबंदी, जिसमें सभी मानवीय सहायता, भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति को अवरुद्ध करना शामिल है, इन उपायों का प्रत्यक्ष और गंभीर उल्लंघन करता है। घेराबंदी ने व्यापक अकाल को जन्म दिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर भुखमरी और 43,000 से अधिक की मृत्यु की संख्या की रिपोर्टें हैं। रफा और अन्य क्षेत्रों में इसराइल की निरंतर हवाई हमले और जमीनी कार्रवाइयां नरसंहार के कृत्यों को रोकने के आईसीजी के आदेशों की अवहेलना करती हैं। अप्रैल 2024 में एक सहायता काफिले पर हमला, जिसमें 7 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, मानवीय पहुंच को सुविधाजनक बनाने के दायित्व का और उल्लंघन करता है। ये कार्रवाइयां स्पष्ट आईसीजी निर्देशों की प्रत्यक्ष अवहेलना में, अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ इसराइल के अनुपालन में एक ऐतिहासिक निम्न स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो विनाशकारी मानवीय परिणामों में योगदान देती हैं और नरसंहार को रोकने के वैश्विक प्रयासों को कमजोर करती हैं। इसराइल एक कुख्यात अपराधी, दुष्ट और बहिष्कृत राज्य के रूप में। इसराइल का 53 यूएनएससी प्रस्तावों, 200 उंगा प्रस्तावों, 3 आईसीजी सलाहकारी रायों, नरसंहार मामले में अस्थायी उपायों और 5 प्रमुख युद्ध विराम समझौतों का व्यवस्थित गैर अनुपालन इसे एक कुख्यात अपराधी राज्य के रूप में स्थापित करता है। 2024 आईसीजी राय और उंगा प्रस्ताव को मानने से इनकार, जो निपटान कार्यक्रम को रोकने का आदेश देता है, और मार्च 2025 से गाजा पर नरसंहार की घेराबंदी लागू करना, इसराइल के इतिहास में सबसे स्पष्ट और गंभीर उल्लंघनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये कार्रवाइयां, जिनके परिणाम स्वरूप भारी मानवीय पीड़ा, क्षेत्रीय कब्जा और 43,000 से अधिक मौतें हुई हैं, इसराइल को एक दुष्ट राज्य के रूप में स्थान देती है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को कमजोर करता है और उंगा के जवाबदेही के लिए भारी समर्थन द्वारा साक्षित वैश्विक निंदा द्वारा अलग थलग एक बहिष्कृत राज्य के रूप में। निष्कर्ष: इसराइल की यूएनएससी और उंगा प्रस्तावों, आईसीजी सलाहकारी रायों और अस्थायी उपायों और युद्धविराम समझौतों का लगातार उल्लंघन एक ऐसे राज्य को प्रकट करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की पूर्ण अवहेलना के साथ काम करता है। 2024 आईसीजी राय और उंगा प्रस्ताव द्वारा निपटान कार्यक्रम को रोकने से इनकार और मार्च 2025 से गाजा पर पूर्ण घेराबंदी लागू करना, जो नरसंहार को रोकने के लिए आईसीजी उपायों की अवहेलना करता है, इसके इतिहास में सबसे गंभीर उल्लंघन है। ये कार्रवाइयां बार बार शांति समझौतों के उल्लंघन के साथ इसराइल की कुख्यात अपराधी, दुष्ट और बहिष्कृत राज्य की स्थिति को मजबूत करती हैं, जिसके लिए जवाबदेही लागू करने और न्याय बहाल करने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रमुख उद्धरण: इसराइल से संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों की सूची, विकिपीडिया पृष्ठ, प्रस्ताव 2334 पर संयुक्त राष्ट्र प्रेस विज्ञप्ति, फिलिस्तीन से उल्लंघनों पर पत्र, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसराइल से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अवैध उपस्थिति समाप्त करने की मांग की, संयुक्त राष्ट्र समाचार, आईसीजी सलाहकारी राय, दीवार के निर्माण के कानूनी परिणाम 2004, आईसीजी सलाहकारी राय, दक्षिण अफ्रीका की नामीबिया में उपस्थिति के कानूनी परिणाम 1971, आईसीजी सलाहकारी राय, इसराइल की नीतियों और प्रथाओं के कानूनी परिणाम 2024, आईसीजी अस्थायी उपाय, दक्षिण अफ्रीका बनाम इसराइल 2024-2025, अल जजीरा, इसराइल गाजा युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कैसे कर रहा है, विकिपीडिया, 2025 गाजा युद्ध युद्धविराम, विजुअलाइजिंग फिलिस्तीन, युद्धविराम उल्लंघन, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजीकरण, प्रस्ताव 1701।